लक्षण कौन सही है कौन गलत है, ये आपने इससे पहले पढ़ा था कि जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीन तरह के दोषों में से कोई दोष न हो वह सही लक्षण है, और अगर कोई भी हो तो वो गलत लक्षण होगा। आज उसके बाद परीक्षा की चर्चा करते हैं। परीक्षा मतलब वो होने वाली क्लास वाली परीक्षा नहीं, यहाँ जो शास्त्र की त्रिविधा प्रवृत्ति होती है उसमें तीन बातें थी ना, एक था उद्देश्य, दूसरा था लक्षण, तीसरी बात थी परीक्षा। तो वह जो परीक्षा है वह परीक्षा क्या है, उस परीक्षा का लक्षण क्या है, तो पुस्तक में देखिए लिखा है लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नौवा इति विचारः परीक्षा। परीक्षा किसे कहते हैं, तो लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नौवा, लक्षित मतलब हो गया लक्षित और लक्ष्य एक ही चीज है, पर्यायवाची शब्द है। तो लक्षित का जो लक्षण किया गया है वह उपपद्यते नवा, वह उपपन्न होता है कि नहीं होता है, माने वास्तव में वह लक्षण जो है वह सही है कि नहीं है, सही होना और सही नहीं होना की जो का जो विचार है उस विचार को ही यहाँ पर परीक्षा कहा गया है। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नवा, पहले एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए फिर बाकी का अर्थ समझते हैं। लक्षितस्य माने लक्ष्यस्य, लक्ष्य का लक्षणम, लक्षणम तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लक्षण कहते हैं असाधारण धर्म को। फिर उपपद्यते माने उपपन्न होता है, उपपन्न होता है मतलब संभव होता, न बा अथवा नहीं, इति विचार है, यह जो विचार है इस विचार का नाम है परीक्षा। तो अब वाक्य का पूरा अर्थ क्या होगा कि लक्षित का लक्षण संभव होता है या संभव नहीं होता है, इस प्रकार का जो विचार है उसको हम परीक्षा कहते हैं। तो परीक्षा अपने क्लास वाली परीक्षा में अगर पूछे कि का नाम परीक्षा, परीक्षा किसे कहते हैं, तो यही लिखना है कि लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नौवा इति विचारः परीक्षा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि आपने लक्ष्य क्या था गो, लक्षण क्या था शासनादिमत्व, तो शासनादिमत्व लक्षण जो है वह गो में उपपद्यते नौवा माने संभवति नौवा, वह संभव होता है कि नहीं होता है, इस तरह का जो आप विचार करेंगे देखेंगे कि सचमुच गाय में जो है सासना होती है कि नहीं, आदि से पूंछ और सिंह को लिया था ना आपने, तो वो पूंछ है कि नहीं सिंह है कि नहीं, जब आपने देख लिया कि ये सब है तो आप परीक्षा का फल यही हुआ कि आप समझ गए कि हाँ इसमें ये सारी चीजें हैं इसलिए ये गाय कहलाने के योग्य है या सचमुच गाय है। तो इस तरह से जो विचार किया जाता है इसी विचार का नाम है परीक्षा। अब यहाँ पर प्रथम सूत्र जो था प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, उसमें कहा था ना कि ये जो षोडश पदार्थ हैं इनका तत्व ज्ञान अगर होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इनका तत्व ज्ञान कैसे होगा, केवल उद्देश्य करने से नहीं होगा, उद्देश्य मतलब केवल नाम मात्र कथन करने से, केवल नाम ले लेने से तो इसका तात्विक ज्ञान नहीं होगा ना, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, प्रमाण आदि जो षोडश पदार्थ हैं उसके तात्विक ज्ञान के लिए, उसके लिए आपको ये दो काम करने पड़ेंगे, एक तो लक्षण करना पड़ेगा और दूसरा परीक्षा करनी पड़ेगी। तो जितने भी हैं प्रमाण है तो प्रमाण का क्या लक्षण है, और फिर अब उसकी परीक्षा करेंगे कि ये जो लक्षण है इस सारे प्रमाण में जो है ना ये लक्षण फिट बैठता है कि नहीं बैठता। तो जब लक्षण भी कर लेंगे परीक्षा भी कर लेंगे उसके बाद प्रमाण का तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसी तरह से प्रमेय है, प्रमेय का भी लक्षण करेंगे फिर उस वह लक्षण सारे प्रमेयों में जाता है कि नहीं जाता है, उसमें अव्याप्त अतिव्याप्त असंभव दोष तो नहीं है, इस तरह से जब विचार कर लेंगे तो प्रमेय का ज्ञान हो जाएगा। जैसे आपने गो का किया था ना, तो गो का अगर शासनादिमत्वम गोत्वम, तो जहाँ जहाँ जिसमें जिस प्राणी में शासना रहेगी वह गाय है, बाकी गाय नहीं है, तो आपको इस लक्षण से गो का तात्विक ज्ञान हो गया ना, गो का सम्यक ज्ञान हो गया ना, ऐसे ही ये जो 16 के 16 पदार्थ हैं इनका भी जो है लक्षण और परीक्षा के द्वारा जो है हमें तात्विक ज्ञान प्राप्त करना है। और यह तात्विक ज्ञान जब हो जाए, तात्विक ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तो यह जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा उसके उसके द्वारा क्या फल मिलेगा, निःश्रेयस अधिगम। हाँ, निःश्रेयस माने मोक्ष, अधिगम मतलब प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पुस्तक में कहते हैं तेना, तेना माने तेन कारणेन अर्थात शास्त्र की जो तीन तरह की प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन तीन प्रवृत्ति मतलब उस शास्त्र में होने वाला व्यवहार या उस शास्त्र में होने वाला वर्णन, उस शास्त्र में होने वाला विवेचन, तीन टाइप का विवेचन होता है शास्त्र में, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान करने के लिए हमें क्या करना होगा, तेना एते लक्षण परीक्षे प्रमाण आदि नाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। प्रमाण प्रमेय आदि जो तत्व हैं उनके ज्ञान के लिए हमें लक्षण और परीक्षा का अध्ययन करना चाहिए, उसका उसको जो है समझना चाहिए। तो अब धीरे धीरे जो है ना हम ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और अभी तक आप लोगों ने मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी जान लिया होगा और धीरे धीरे समझने की शक्ति भी जो है आप लोगों की विकसित हो रही होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो प्रमाण शब्द आया है, प्रमाण शब्द कहाँ पर आया है, ये जो सूत्र में 16 पदार्थ जो गिनाए गए थे ना, उन 16 पदार्थों में पहला पदार्थ क्या था, प्रमाण पदार्थ था ना। तो आपको इस तर्कभाषा पुस्तक में 16 पदार्थों का ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो पदार्थ है प्रमाण पदार्थ, उसके बारे में अब यहाँ पर विचार किया जा रहा है। विचार कैसे होगा, तो दो ही तरीके हैं उसका, एक तो लक्षण किया जाएगा और दूसरा जो है उस लक्षण की परीक्षा की जाएगी। ये दो काम ही होंगे, 16 पर पूरी पुस्तक में यही काम होना है कि ये जो 16 पदार्थ हैं उसका लक्षण और उस लक्षण की परीक्षा। परीक्षा तो आज ही मैंने समझाया है कि लक्ष्य का जो लक्षण आपने किया है वह लक्षण उसमें संभव है कि नहीं है, वह वास्तव में वो लक्षण सारे लक्ष्यों में जाता है कि नहीं जाता है, लक्ष्य से ज्यादा में तो नहीं जाता है, लक्ष्य से कम में तो नहीं जाता है। तो इस तरह से जो विचार करना है वही है परीक्षा। तो प्रथम जो पदार्थ है उस पदार्थ को जो है आज हमें समझना है। तो प्रथम पदार्थ कौन है 16 पदार्थ में से, प्रमाण पदार्थ है। तो अब उसका विचार करते हैं। पुस्तक में देखिए तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य ताबल लक्षणम उच्यते। तत्रापि माने ये जो 16 पदार्थ हैं उनमें से, तत्र अपि माने 16 पदार्थेषु अपि, 16 पदार्थों में प्रथम जो उद्दिष्ट पदार्थ है, उद्दिष्ट माने कथित, उक्त, और प्रथम माने सबसे पहले, तो 16 पदार्थों में सबसे पहले जो उद्दिष्ट है माने कहा गया है, क्या कहा गया है, तो प्रमाण पदार्थ कहा गया है। तो उस प्रमाण पदार्थ का लक्षणम उच्यते, यहाँ पर जो है लक्षण बताया जाता है पुस्तक में। क्या है प्रमाण का लक्षण, तो प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाण किसे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमाण किसे कहते हैं, तो जो प्रमा का करण है वही प्रमाण है। प्रमाण का लक्षण क्या हुआ, प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण होता है वह करण प्रमाण कहलाता है, प्रमाया करणम प्रमाणम। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये लक्षण तो इसलिए किया जाता है ना कि समझ में आ जाए, इसमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं, न प्रमा जानते हैं न करण जानते हैं। तो आपने कहा कि प्रमा का जो करण हुआ प्रमाण होता है, इससे हम कैसे प्रमाण को समझेंगे, तो इसीलिए गुरुजी की जरूरत होती है ना। तो इसको समझिए, ये प्रमा क्या है, करण क्या है, फिर आप लक्षण समझ जाएंगे। प्रमा बेटा दो तरह का ज्ञान होता है, एक होता है यथार्थ ज्ञान और दूसरा होता है अयथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान समझते हैं ना, वास्तविक में ज्ञान, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, ये हो गया यथार्थ ज्ञान। और अयथार्थ ज्ञान माने जो जैसा नहीं है वैसा समझ लेना, ये हो गया अयथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान जो है वही है प्रमाण, ठीक है। अब जैसे आग को आग समझना, पानी को पानी समझना, विद्वान को विद्वान समझना, ये क्या है, प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है। अच्छा, अब उस प्रमा का जो करण होगा वह प्रमाण कहलाएगा। ये कारण क्या है, तो दो शब्द हैं, एक है कारण और एक है करण, ठीक है। तो कारण तो आप लोग समझते ही हैं ना, जैसे घड़ा बनाया जाता है, तो जिस चीज से घड़ा बनता है वो घड़ा का कारण हो गया। अब जैसे आग जलती है, तो आग जिसके कारण आग जलती, जिससे आग जलती है वह कारण। जैसे लकड़ी से आग जलती है तो आग जलने का कारण क्या है, लकड़ी है। तो वैसे ही करण भी जो होता है ना, वो भी एक प्रकार का कारण ही है, लेकिन कारण और करण में थोड़ा अंतर होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जो है ना, करण का अर्थ आप समझ लीजिए विशेष रूप, विशेष कारण, ठीक है। कारण दो प्रकार का हो गया, सामान्य कारण और विशेष कारण। उसमें जो विशेष कारण है उसको हम करण कहते हैं, क्लियर। तो हम प्रमा भी समझ गए, माने यथार्थ ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं, और उस यथार्थ ज्ञान में जो कारण होता है, माने जिसके कारण से यथार्थ ज्ञान होता है, उसको हम करण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण, ये बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में जैसे आप देखा कि ये यहाँ पर जो है ना एक घड़ा रखा हुआ है, तो अयम घट ये ज्ञान होता है। तो घड़ा सचमुच रखा हुआ है और वहाँ पर घड़ा को देख करके आपको ज्ञान होता है अयम घट। तो ये जो ज्ञान है ये यथार्थ है कि अयथार्थ है, बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि वहाँ पर घड़ा है, घड़ा नहीं होता, और तब अगर घड़ा का ज्ञान होता तो अयथार्थ होता, क्योंकि घड़ा तो वहाँ पर है ही, और घड़ा को जब आपने देखा तो आपको घड़ा का ज्ञान हुआ, तो ये हुआ यथार्थ ज्ञान, इसको हम प्रमा कहेंगे। तो यहाँ जहाँ घड़ा हो वहाँ पर जो देखने से घड़ा का ज्ञान होता है वह क्या है, प्रमा है। और किस कारण से जो है आपको ये प्रमा हुई है, यह यथार्थ ज्ञान हुआ है, तो करण के कारण। उसमें करण क्या है, तो चक्षु इंद्रिय, आपने आँख से उसको जब देखा तब आपको पता चला कि अत्र घटा है, चाहे अयम घटा है। तो इस तरह से किसके कारण आपको ये प्रमा हुई, ये प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, प्रमा स्त्रीलिंग है इंद्रिय, तो इसलिए मैंने प्रमा हुई की बात किया। तो किस कारण से आपको प्रमा हुई, तो चक्षु इंद्रिय के कारण आपको ये प्रमा हुई है। तो यह जो जिस कारण से प्रमा होती है उस कारण का नाम है करण, ठीक है। तो यहाँ पर अयम घट यह प्रमा है, और उसका करण कौन है, चक्षु इंद्रिय जो है वह उसका करण है। तो इस तरह से प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा के जितने भी करण हैं, अब कितने प्रकार के प्रमा हैं, कितने प्रकार के करण हैं, वो सब बातें आगे आएंगी। अभी जनरली सामान्य तौर पर आप समझिए कि प्रमा का जो करण होता है उसको हम प्रमाण कहते हैं। प्रमा क्या है, तो प्रमा है यथार्थ ज्ञान। करण क्या है, तो विशेष प्रकार का कारण। तो प्रमा का जो करण है उसे हम प्रमाण कहते हैं, क्लियर हो गया ना। अब देखिए कि ये जो आपने क्या किया है, प्रमा करणम प्रमाणम, ये इस लाइन के द्वारा आपने प्रमाण का लक्षण किया है। तो आप याद करिए, मैंने कहा था ना कि जहाँ पर भी जो है लक्षण हम करेंगे वहाँ दो चीजें तो होंगी, एक लक्ष्य भी होगा फिर लक्षण होगा। तो यहाँ लक्ष्य कौन है, लक्षण तो हुआ प्रमा करणम, और लक्ष्य क्या हुआ, तो प्रमाण, क्योंकि प्रमाण का ही लक्षण कर रहे हैं ना यहाँ पर। ऐसे गोह शासनादि मत्वम, तो लक्षण है शासनादि मत्वम, और लक्ष्य क्या है, गोह। इसी तरह से प्रमा करणम प्रमाणम में लक्षण हो गया प्रमा करणम, और लक्ष्य क्या हो गया, प्रमाणम। तो इस तरह से वही कह रहे हैं कि अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम, यहाँ प्रमा करणम प्रमाणम यह जो वाक्य है, इस वाक्य में लक्ष्य क्या है, प्रमाणम यह लक्ष्य है। प्रमा और लक्षण क्या है, तो प्रमा करणम लक्षणम, इसमें प्रमा करणम जो है यह लक्षण है। तो एक ही सेंटेंस में दोनों पार्ट है, लक्ष्य का भी पार्ट है और लक्षण का भी पार्ट है। तो लक्ष्य का पार्ट हो गया क्या, प्रमाणम, और लक्षण का पार्ट क्या हो गया, प्रमा करणम। तो ये पूरी लाइन क्लियर हो गई कि तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल लक्षणम उच्यते। तत्रापि माने उस सूत्र में, प्रमाण प्रमेय वाले सूत्र में जो प्रथम उद्दिष्ट है, माने सर्वप्रथम जो कहा गया है, क्या कहा गया, प्रमाण कहा गया है, उसका लक्षण जो है यहाँ पर उच्यते बताया जाता है। क्या है लक्षण, तो प्रमाकरणम प्रमाणम, इसमें प्रमाकरणम लक्षण है और प्रमाणम जो है यह लक्ष्य है। कितनी बात यहाँ तक हुई है। अब आगे कहते हैं ननु, ये ननु को समझ लीजिए, ये नम जब कोई नया विचार शुरू करते हैं ना, नया शंका समाधान शुरू करते हैं, नया विचार शुरू करते हैं, तो संस्कृत में ये स्टाइल है कि ननु लगा करके सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। इसलिए ननु का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ननु हो ना तो समझ जाइए कि अब कुछ नई बात बताएंगे। तो यहाँ पर कहा कि ननु प्रमाया करणम चेत प्रमाणम तभी तस्य फलम वक्तव्यम, कहा कि आपने लक्षण में बताया कि प्रमा का जो कारण है वह प्रमाण है, प्रमाया करणम चेत प्रमाणम, अने प्रमाण का, प्रमा का करण जो है वह प्रमाण है। यहाँ पर चेत शब्द का प्रयोग किया गया, चेत का मतलब होता है यदि, तो अब सेंटेंस का क्या अर्थ होगा कि यदि प्रमा का करण प्रमाण है, प्रमाया करणम चेत प्रमाणम, यदि प्रमा का करण प्रमाण है तरही तो तस्य फलम वक्तव्यम, तो उसका फल आपको बताना चाहिए। किसका फल बताना चाहिए, करण का फल, करण का फल बताना चाहिए, तस्य माने करणस्य फलम वक्तव्यम, करण का फल आपको बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए जी, जबरदस्ती है क्या? तो कहा कि करणस्य फलवत्व नियमात, इसलिए बताना चाहिए कि करण जहाँ होता है वहाँ पर फलवत्व निश्चित रूप से होता है, नियम माने निश्चित होना, तो निश्चित रूप से वहाँ कोई ना कोई फल होता ही होगा, फल होगा तभी वह करण कहलाएगा, फल नहीं होगा ना तो वह कारण कहलाएगा। मैंने बताया था ना कारण, करण को आगे बताऊंगा और भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि जिस कारण में फल हो वह करण कहलाता है, जिस कारण में फल न हो वह कारण कहलाता है, ठीक है। तो कर यहाँ पर आपने प्रमा के करण को प्रमाण बताया है, इसलिए आपको यहाँ बताना होगा कि इस करण में फल क्या है, क्योंकि बिना फल के करण नहीं होता है। तो इसका जवाब देते हैं सत्यम, हाँ आप सही बता रहे हैं, ठीक है। आगे का पाठ आगे करेंगे, आज यहीं तक।